नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शङ्करात् श्रीमद्भागवतं दशम स्कन्ध छठा अध्याय शीर्षक है उत्तम वर श्लोक संख्या 3। ना यत्र श्रवण आदीने रक्षः
Thank you.
श्रवण आदि
श्रवण
कीर्तन आदि
भक्ति योग के कार्य
रक्षा ज्ञानी
समस्त
विपदाओं तथा अशुभों को मारने की ध्वनि
स्वकर्मसु
अपने काम से लगी
कुर्वन्ति
ऐसे कार्य किए जाते हैं सात्वताम भर्तुहु
भक्तों के रक्षक के
यातु धान्यः बोरेलो उत्पाती च ही तत्र ही हो न हो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद हे राजा जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णुम वहाँ बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहीं वहाँ विद्यमान हों तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए ही यह श्लोक कहा। क्योंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे अतः जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी तो वे कुछ कुछ उद्विग्न हो उठे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है नामाश्रय कोई यतन तुम्हें ठाकुर अपना काज्य। इसलिए हर एक को सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की शरण ग्रहण करे और अपने कार्य में लगा दे। इसमें कोई हानि नहीं किंतु लाभ बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि एक भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह जगत खतरों से पूर्ण है पदम पदम यज्ञ पदम। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए जिससे हमारे परिवार समाज पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चलें और कोई खतरा न रहे। ओम ज्ञान कीर्तनांदस्य
Bye.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावराण्याय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्ण सर्वशक्तिमत्ता का पूर्ण ज्ञान होता है उनको, फिर भी एक भाव ऐसे होता है कि वो भी कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि वहां क्या हुआ होगा जब भगवान अपने विभिन्न अवतारों में असुरों से या राक्षसों से युद्ध करते हैं और समय बीते जाता है, भगवान अपनी युद्ध की लीला में रमण कर रहे होते हैं तो देवतागण बादलों के पीछे छुप कर थोड़े चिंतित होने लगते हैं कि समय बीतते जा रहा है,
अब सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया है और अंधकार होने पर राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी इसका वध कर दीजिए हे प्रभु। मानो कि अंधकार के बाद जब राक्षसों की शक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान को कठिनाई होगी राक्षसों का वध करने की। भगवान के लिए क्या कठिन है? फिर भी देवता का भगवान के भक्त हैं तो ये भाव है। तो राजा परीक्षित भी थोड़े चिंतित हो गए हैं, ब्रजवासियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए भी। तो सुखदेव गोस्वामी अपने थोड़े हंस लेते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ श्री कृष्ण हैं जो सात धाम भक्त हो हैं तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे श्री कृष्ण प्रसिद्ध है कि वो भक्त के रक्षक, भक्तों के रक्षक है। वैसे श्री कृष्ण की लीलाओं में, उनके भक्तों की लीलाओं में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, एक के बाद एक ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं जिनका वर्णन करने के लिए बहुत समय लगेगा। परंतु संक्षेप में एक या दो छोटे छोटे उदाहरण ले लें। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी देवी की रक्षा की जबकि उनका वस्त्र हरण हो रहा था। उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया जबकि मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया था। मृत्यु प्राय निश्चित थी गजेंद्र के लिए, परंतु भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। ग्रह के दुर्गत सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को अंत छुड़ायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो मगरमच्छ से गजेंद्र को बचाया भगवान ने, दुर्गत सुता अर्थात द्रौपदी देवी को वस्त्र हरण से अपमानित होने से बचाया। तो ऐसे ही भगवान बार बार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जितने तीव्रता से हम भगवान को पुकारते हैं उतने ही शीघ्र भगवान प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। द्रौपदी देवी और अक्षय पात्र की लीला भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे भगवान प्रकट हुए ऐन वक्त पर, जबकि भगवान तो द्वारका में थे और पांडव और द्रौपदी के काम्यक वन में थे ब्रजभूमि में, और दुर्वासा मुनि वहाँ पर आ चुके थे और 10,000 शिष्यों के साथ आए, उनको भोजन खिलाना था और अक्षय पात्र में कोई भोजन नहीं रहा, द्रौपदी ने भी भोजन ग्रहण कर लिया था। तो उस दिन अब अक्षय पात्र और भोजन उत्पन्न नहीं कर सकता था। तो उस समय द्रौपदी देवी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों की और द्रौपदी देवी की रक्षा की। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, और भक्तों के जीवन में भी, हम जैसे साधारण भक्तों के जीवन में भी हम सबका अनुभव है समय समय पर कैसे कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं विकट परिस्थितियों में। इसलिए द्रौपदी देवी प्रार्थना करती हैं महाभारत में, प्रतिज्ञा तव गोविंद नमे भक्तः प्रणश्यति इति संस्कृत्य संस्कृत्य प्राणाधारयाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा ली हुई है नमे भक्तः प्रणश्यति, इसी प्रतिज्ञा को मैं बार बार याद करती हूँ इति संस्कृत्य संस्कृत्य, और ऐसे बार बार स्मरण करने के वजह से ही मैं अपने प्राण को अभी तक रख पाई हूँ शरीर के अंदर, अन्यथा कब के प्राण त्याग दिए होते हमने। तो भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है और भगवान अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कुछ ऐसी हैं इन लोगों को कभी कभी संदेह में डाल देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा लूंगा कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। तो लोग शायद विश्वास करें या न करें पता नहीं, लोगों को मेरे में विश्वास कम हो सकता है लेकिन भक्तों में विश्वास अच्छा तगड़ा है विश्वास। इसलिए तुम घोषणा करो। इसलिए भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निरक्षति मौतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त रक्षति। मेरा मेरे भक्त के जीवन में कोई कठिनाई हो भी जाए, उसका अकस्मात पतन हो भी जाए, फिर भी क्योंकि वो मेरे भक्ति में सुदृढ़ रूप से स्थित रहता है, इसलिए मैं उसे साधु मानता हूँ। साधु एव स मंतव्य है। और शीघ्र ही वो अपने पूर्ण अवस्था में स्थित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तो घोषणा करो हे अर्जुन कि मेरे भक्त की हानि कभी नहीं होती, मेरे भक्तों की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। ब्रजवासियों के लिए भी श्री कृष्ण प्रतिदिन रक्षा करते थे। ऐसे बताया जाता है कि शायद ही ऐसे कोई दिन बीता हुआ होगा गोकुल में और वृंदावन में कि जब कोई असुर नहीं आया। शायद श्री कृष्ण ने दोपहर का प्रसाद या भोजन जो है वो एक या दो असुरों को कवर करने से पहले खाया नहीं होगा, ग्रहण नहीं किया होगा। प्रतिदिन जिन असुरों का वर्णन हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं वो तो गिने चुने महत्वपूर्ण असुर हैं। वैसे तो कंस ने कितने सारे भेजे, तो बार बार श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करते गए। और केवल कंस और असुरों से नहीं, पृथ्वी लोक के साधारण प्राणियों से नहीं, देवलोक के राजा इंद्रदेव के प्रहार से भी उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की। गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला तो प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजभूमि गए तो गोवर्धन भी आए, गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने की। तो गोवर्धन का दर्शन जब उन्होंने किया तो दर्शन करके प्रणाम करके वो कहने लगे, वामस्तावर साक्षस्य निज भुजदंड पदे पतु वाह। वो कहने लगे कि जो वाम है, वाम मतलब बाया, तामर से मतलब कमल पुष्प, अक्ष अक्ष मतलब आंखें, तो उनके उनका बाया हाथ जिनका जिनके कमल पुष्प है तामर साक्षस्य, ऐसे श्री कृष्ण जिनके कमल नयन है उनका बाया हाथ, उनके बाएं हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। ये तो गोवर्धन हरि क्रीड़ा कंदुकताम ये नीतो गोवर्धन गिरी, एक खिलौने की तरह है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ से धारण किया था। तो ऐसे श्री कृष्ण के बाएं हाथ जो है आपकी रक्षा करे। भुजदंड पदु समाह, भुजदंड अर्थात उनकी भुजाएं, पतु मतलब रक्षा करे, पर मतलब आपके। तो ये प्रार्थना है जिसमें आशीर्वचन दिया जा रहा है कि वो श्री कृष्ण जो कमल नयन हैं जिन्होंने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, वो बाया हाथ आपकी रक्षा सदैव करे। तो ब्रजवासी कौन होते हैं? जिन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय लिया होता है, जिनका चित्त सदैव श्री कृष्ण समाया हुआ होता है, बड़ी निकटता से श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, ये ब्रजवासी होते हैं, जो श्री कृष्ण के बहुत निकट के भक्त होते हैं।
तो ऐसे ब्रजवासियों की रक्षा भी बार बार श्री कृष्ण ने की। अब प्रश्न ये आता है कि श्री कृष्ण तो हमारे सामने प्रकट नहीं है, जैसे कि वो द्रौपदी के सामने थे या अर्जुन के सामने थे या ब्रजवासियों के सामने थे, तो फिर श्री कृष्ण हमारी रक्षा कैसे करेंगे? श्री राजीव गोस्वामी बताते हैं कि एक ही तत्व दो प्रकार से प्रकट होते हैं। कौन से तत्व? जो परम सत्य है श्री कृष्ण, एक है रूप और दूसरा है नाम, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो शक्तियां रूप में है वो नाम में भी है, जो गुण रूप में है नाम में भी है। नाम नाम काल बहुधा ये सर्वशक्ति तत्म। तो ये अर्पण किए हुए शक्ति में भगवानों के नाम में समस्त शक्तियां सारे गुण भगवान के उनके नाम में भी है, क्योंकि नाम और रूप दोनों अभिन्न है। अभिन्न होने के कारण हरि नाम भी समर्थ है। जैसे श्री कृष्ण समर्थ हैं, हरि नाम भी समर्थ है। जैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम सदैव रहते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम भी भक्तों की रक्षा करने में सदैव सक्षम रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, कि वो भक्तों की रक्षा करने आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आते हैं और धर्म की संस्थापना करने आते हैं युग युग में, तो ये संशय मन में उत्पन्न हो सकता है, ऐसे आचार्य ने कहा है। और ये एक सही प्रश्न है कि वैसे जहाँ तक धर्म की स्थापना होती है उसके लिए भगवान को यहाँ आने की क्या जरूरत है? भगवान वहाँ बैठे बैठे क्या धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? यहाँ पर अवश्य कर सकते हैं, उनके इतने सारे भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो सब धर्म की स्थापना करते आए हैं, प्रचार आदि करके अपने उदाहरण से भी सारे विश्व को सिखा रहे हैं कि धर्म क्या चीज है, धर्म का पालन कैसे किया जाता है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक दुष्टों का विनाश करने का सवाल है, इसके लिए भी भगवान को वैसे देखा जाए तो आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी भौतिक शक्ति ही पर्याप्त है इस कार्य के लिए। छोटी सी चीज हो गई, कोई सुनामी हो गया, कोई बाढ़ हो गया, कोई भूकंप हो गया, हृदय का दौरा आ गया, बस इससे वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने काल शक्ति के माध्यम से तो सारे विश्व का विनाश आसानी से करते हैं। तो कोई छोटे मोटे बड़े भी हो, दुष्टों का विनाश करने में क्या कठिनाई है भगवान? तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भी भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ आते हैं? अवश्य आते हैं, क्योंकि वो भगवान से भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनका नाम है भक्त वत्सल, और इतना प्रेम होने के कारण भक्तों की रक्षा तो अवश्य करते हैं, और इसलिए स्वयं यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। फिर भी आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने प्रेम के कारण आ जाते हैं वो दूसरी बात है, परंतु आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त लोग हरि नाम लेते हैं और हरि नाम की रक्षा करने के लिए सक्षम है, तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? और ये बात सही है। तो भगवान अवतार लेते हैं केवल भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपनी लीलाओं के द्वारा, जैसे कि गोवर्धन को उन्होंने क्रीड़ा कंदुकताम लेना नहीं तो गोवर्धन गिरी, जैसे खिलौने की तरह गोवर्धन को उठाया
इससे भक्तों को बड़ा आनंद दिया उन्होंने। और आज भी हम और अनंत काल तक भगवान की गोवर्धन लीला का वर्णन चलता रहेगा। इस लीला के बारे में सुनने में, बोलने में, स्मरण करने में भक्त लोग बहुत आनंद लेंगे। तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके हृदय को भक्ति के आनंद से पोषित करना चाहते हैं, इसलिए भगवान आते हैं। तो जहां तक भक्तों की रक्षा है, इसके लिए हरि नाम पर्याप्त है। यहां भी इसी बात को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, जब कृष्ण का नाम संकीर्तन करने मात्र से या कृष्ण का गुणगान करने से, कृष्ण लीला आदि का वर्णन करने मात्र से जब भक्तों की रक्षा हो सकती है, तो जब स्वयं श्री कृष्ण गोकुल में उपस्थित हैं, तो क्या कोई समस्या हो सकती है? कोई डर हो सकता है ब्रजवासियों के लिए? जिनके नाम उच्चारण मात्र से सबकी रक्षा हो सकती है, उनकी स्वयं उपस्थिति से डर की क्या बात है? क्यों ऐसे डरना चाहिए किसी को? तो ये भी एक बहुत प्रेरणात्मक बात हम सबके लिए है। हम ऐसे जिनको संशय है कि भगवान तो हमारे बीच में उपस्थित उस तरह से तो नहीं है जैसे वो अर्जुन के साथ, द्रौपदी के साथ, ब्रजवासियों के साथ थे, और नहीं हम 24 घंटे राधा गिरधारी के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन हाँ हरि नाम तो अवश्य ले सकते हैं, 24 घंटे हरि नाम ले सकते हैं, इससे हमारी रक्षा हो सकती है। श्री राजीव गोस्वामी पार बताते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धतियां हैं, मार्ग हैं, उनमें से भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति मार्ग में ही कई साधन हैं, नवधा भक्ति है, 9 अंग हैं प्रमुख भक्ति में, भक्ति योग में। तो इन 9 अंगों में से श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम ये प्रधान है। अब इन 3 अंगों में से जीव गोस्वामी कहते हैं कीर्तनम सर्वश्रेष्ठ है। अब कीर्तनम भी कई प्रकार के हो सकते हैं, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो 3 प्रकार के कीर्तनों में से नाम कीर्तन श्रेष्ठ है। इस तरह से जितने भी पद्धतियां, जितने भी मार्ग उपलब्ध हैं सारे सृष्टि में, उनमें से नाम संकीर्तन का जो पद है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये शास्त्रों का और आचार्यों का निष्कर्ष है। नाम लेने में जैसा हम सब जानते हैं कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हम कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए, इससे हमारी रक्षा होगी। गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। बचपन में उनकी एक लीला हुई थी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे संन्यास लेने के बाद, तो गोपाल गुरु उस समय बहुत छोटे बच्चे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसे बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ समय बिताया करते थे। एक बार हुआ ये कि इस बच्चे ने देखा कि एक व्यक्ति भक्त है और बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, परंतु वो थोड़े भोले भाले सरल भक्त थे, इतना शास्त्रों का ज्ञान वगैरह उनको नहीं था, परंतु हृदय से बड़े शुद्ध थे, कृष्ण के प्रति प्रेम था उनके हृदय में। तो वो एक बार अपना जीव पकड़ कर इधर उधर जा रहे हैं, कहीं जा रहे थे, तो बच्चे बालक गोपालक को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, ऐसे जीप पकड़ के क्यों जा रहे हो? बोला मैं शौचालय में जा रहा हूँ। तो तो शौचालय में जाने के लिए जीभ पकड़ना चाहिए क्या? बच्चे बहुत सवाल करते हैं ना, कभी कभी अच्छे सवाल करते हैं। तो ऐसे जीभ पकड़ के क्यों जा रहे हैं वो शौचालय में? तो उस भक्त ने कहा कि देखो, मैं एक गंदे स्थान में जा रहा हूँ, गंदा कार्य करने जा रहा हूँ, तो ऐसे गंदे स्थान में गंदे कार्य करते समय मैं एक शुद्ध चीज का उच्चारण करूँ, भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करूँ, तो ये ठीक नहीं है। और मेरा जीव जो है वो सतत कृष्ण का नाम लेते रहता है, मैं इतना कोशिश करता हूँ उसको रोकने के लिए, परंतु मेरा जीव रुकता नहीं है, कृष्ण का नाम निरंतर जपते रहता है मेरा जीव। तो इसलिए कम से कम शौचालय में जाते समय तो इस जीव को रोकना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे जीव को पकड़ कर रखा। तो गोपाल ने कहा, ऐसे तो सही नहीं है, हमारी रक्षा के लिए तो हरिनाम लेना अवश्य है, हरिनाम हमारी हर अवस्था में रक्षा कर सकता है, मृत्यु से भी रक्षा कर सकता है, मृत्यु के समय हमें हरिनाम लेना चाहिए, अन्यथा हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यदि शौचालय में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जीव पकड़ के आप बैठे हुए होंगे और हरिनाम नहीं ले पाओगे। तो भक्त ने कहा, बहुत अच्छी बात कही तुमने गोपाल, तो ठीक है, मैं अब जीव पकड़ूंगा नहीं, शौचालय में भी हरिनाम लेता रहूंगा। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु के कानों तक पहुंची। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि भाई, ये गोपाल कितना बुद्धिमान लड़का है। तो आज से ये गोपाल है सबका गुरु, इसलिए इसका नाम होगा गोपाल गुरु। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम गोपाल गुरु रखा और आगे चलते हुए गोपाल गुरु गोस्वामी। तो गोपाल गुरु गोस्वामी रहते थे काशी मिश्र के घर में, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, जहाँ की गंभीरा है। ये गंभीरा एक छोटा कमरा है जिसमें महाप्रभु रहा करते थे। अब वहाँ राधा राधा कांत मठ है, आज भी है। तो वहाँ पे वो रहा करते थे, मठ को संभालते थे। और उनके बाद उनके शिष्य ध्यानचंद गोस्वामी ने मठ की जिम्मेदारी संभाली। खैर, वो भी और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक तो कहने का तात्पर्य ये है कि हरिनाम हमारी रक्षा करने पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए हमें सतत हरिनाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हर प्रकार के भौतिक कष्टों से भी मुक्त होने के लिए हमें हरिनाम सदैव लेते रहना चाहिए, केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, भौतिक कष्टों से भी राहत देनी हमें चाहिए, तो हरिनाम ही उपयुक्त उपाय है। जब आध्यात्मिक प्रगति की बात होती है तो हरिनाम लेना ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। परंतु जब कोई घर में समस्या हो जाती है, कोई हमारे ऊपर काला जादू जादू टोना कर रहा होता है, आजकल बजाने बहुत बढ़ गया है, कई भक्त लोग आते हैं हमारे, हम किसी के पास गए थे, वो कहते हैं फलाना व्यक्ति हमारे कोई रिश्तेदार हमारे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, किसी ने पत्र मंत्र कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर वो कुछ कहते हैं, ये देवी के पास जाना, ये नाग की उपासना करना, ऐसे बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो क्योंकि इतने पीड़ित होते हैं भक्त कोई ना कोई समस्या से, तो कभी कभी ऐसे चीज़ों को अपना लेते हैं, कहीं काली की पूजा, कहीं नाग की पूजा, कहीं कुछ कहीं कुछ, कभी भूत प्रेत की समस्या होती है। तो यदि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आश्रय पूर्णतः नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर काम कर सकती हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने हरिनाम का आश्रय पूर्णतया लिया हुआ होता है उसके लिए ऐसे कोई डर नहीं रहता, हरिनाम ही उसकी रक्षा करने में सक्षम है। तो हरिनाम हमारे लिए पर्याप्त है, और किसी चीज में हमें क्यों जाना चाहिए? हाँ, जब
हम बीमार पड़ जाते हैं तो वैद्य के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं अवश्य, परंतु दवाइयां भी तब काम करेंगी जब विष्णु या भगवान कृष्ण चाहे तो। औषधीम चिंतये विष्णुम, ऐसे कहावत है शास्त्र में कि जब हम दवाई भी लेते हैं तो भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण करना चाहिए जिससे कि दवाई काम करे। वैद्यो नारायण हरि ही, सच्चे वैद्य तो भगवान नारायण या हरि श्री कृष्ण है, उनकी अनुमति के बिना न डॉक्टर अपना काम कर पाएंगे न दवाई भी कार्य कर पाएगी। हम जाते हैं परंतु ऐसे तांत्रिक मांत्रिक लोगों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तरह तरह के झाड़ू बोला बताएंगे, ये सब बड़े खतरे की चीज होते हैं, इसमें भक्तों को जाना कुछ उचित नहीं है। बस हरि नाम और तीव्रता से लेना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य होगा। परीक्षित महाराज के जीवन में कितने बड़े कष्ट आए, मृत्यु के द्वार पे खड़े थे, परंतु शुक्रदेव गोस्वामी ने उनको ये नहीं कहा कि आप कोई दवा जादू करो या कैसे कोई मंत्र तंत्र ब्रह्मांड के मंत्र तंत्रों का उच्चारण करो। जब एक बार ऐसे हुआ लंदन में प्रभुपाद जी आए थे तो कोई ऐसे एक अंग्रेज दंपति थे जो आगे थे उनकी कथा सुनने के लिए, तो फिर वो महिला आई और उनसे शिष्यों से कहने लगी प्रभुपाद जी के शिष्यों से कि हमारे घर में कुछ भूत प्रेत और ज्यादा है और ये रात भर कुछ कुछ आवाज करते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती रात को। तो भक्तों ने आके प्रभुपाद जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब मृगन प्रताप ले लो और वहां जाओ, वहां जाके प्रदक्षिणा करो, घर में बस एक घंटे तक या दो घंटे तक या तो नहीं है जो भी है, सब तक केवल घूम घूम के वहाँ कीर्तन करो, खूब कीर्तन करो। तो भक्त लोग वहाँ गए और काफी समय तक उन्होंने बड़े उत्साह से कीर्तन किया और उसके बाद से फिर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई वहाँ कोई बंदी। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं जिनको भूत प्रेत आदियों का डर है हरि नाम करो, कीर्तन करो। भक्ति विक्रम ठाकुर ने भी ऐसे किया, जब वो सरकारी अधिकारी व्यक्ति थे तो एक बार वहां एक पेड़ में एक भूत रहा करता था तो वो सबको परेशान करता था और इसलिए सारे गांव के लोग जाकर वो भूत की उपासना करते थे कि भाई हमें परेशान नहीं करना। और ये भूत एक और चीज के लिए बड़ा प्रसिद्ध था कि यदि किसी का कोई अदालत का मामला होता था ना, और आज तक इसका नहीं होता, एक व्यक्ति का अदालत में हर एक व्यक्ति कहीं कहीं अटका हुआ होता है कहीं कहीं काम से, तो वो क्या करते थे, इस भूत की उपासना करते थे और फिर जो न्यायाधीश है उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती थी कि इस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय ले, ऐसे हुआ करता। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी उच्च स्तर के न्यायाधीश थे, उन्होंने सोचे ये सब तो गड़बड़ बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने सबको आदेश दिया गांव वालों को, उन्होंने ब्राह्मणों को नियुक्त किया कि वहां बैठो उस वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत का पाठ करो और हरि नाम कीर्तन करो और वो भूत वहां रह नहीं पाएगा। तो ऐसे जब लगातार दिन के बाद दिन ऐसे कीर्तन और कथा हुई तो वो भूत वहां से चला गया और एक शाखा जो थी उस वृक्ष की वो टूट गई, जिससे सबको पता चला कि भूत वहां से आ गया। इसे प्रभुपाद जी कहा करते थे जब भी ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो हमें जोर से हरि नाम लेना चाहिए, ये हमारी रक्षा कर देगा। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, जब किसी ने पूछा कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है तो प्रभुपाद जी ने कहा जोर से जप करो, जोर से कीर्तन करो, ऊंचे स्वर में हरि नाम लो और लेते रहो, तब हृदय से तुम्हारा अंदर तुम्हारे अंदर जो भी डर है वो चले जाएगा और साथ साथ रक्षा भी अच्छी तरह से हो जाएगी। एक भक्त बता रहे थे कई साल पहले, बॉम्बे के भक्त बॉम्बे की रेलगाड़ी में सफर करते थे
अब आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि बंबई की रेलगाड़ियों की दशा क्या है। तो वो बेचारे निकलना चाहते थे, जब उनका स्टेशन आ गया लेकिन जगह नहीं मिली निकलने के लिए। ये प्रकार है कैसे धक्का मार के इधर उधर से कैसे एक पाँव को स्टेशन पे उन्होंने रख दिया, दूसरा पाँव ट्रेन के अंदर रह गया और वहाँ ट्रेन चालू हो गई। साथ साथ उनकी जो थाली थी ठहरी थी कंधे से लटकने वाली, और ऐसे उन्होंने गर्दन के इस ओर से रखा था, थैली भी लटक गई वहाँ भीड़ में। अब गाड़ी चालू हो गई और बेचारे एक पैर से छिले जा रहे हैं ट्रेन के साथ। क्या किया जाए क्या किया जाए? फिर उनको याद आया कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, तो बड़े जोर से उन्होंने
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और मानो कि जादू हो गया, सारा रास्ता खुल गया बस आराम से। तो कहने लगे उस दिन से मेरी श्रद्धा हरिनाम में बहुत बड़ी। तो खैर ऐसे है, हमारे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि हरिनाम किस तरह से हमारी रक्षा कर सकती है। आगे चल के इसी अध्याय में हम देखने वाले हैं कि कैसे पुतना के वध करने के बाद माता यशोदा श्री कृष्ण की रक्षा के लिए गोमय गोमूत्र आदि से तिलक लगाने वाली हैं श्री कृष्ण के देवी शरीर को। मंत्रों के उच्चारण से, श्री कृष्ण के नामों से, पवित्र नामों से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता कितनी सुंदर है कि केवल गाय और हरिनाम यदि हो तो हमारी सारी रक्षा हो सकती है। जैसे माता यशोदा ने रक्षा प्रदान करने का प्रयास किया श्री कृष्ण को, उसी तरह से हम भी कर सकते हैं यदि हम हरिनाम लेते रहें। जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के स्थान पर आए गंगा के तट पर, जहाँ वो उपवास कर रहे थे, 7 दिनों की तैयारी कर रहे थे, 7 दिनों व्यक्ति होनी थी उनकी, परीक्षित महाराज ने अनेकों से प्रश्न पूछा था पहले कि मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, क्योंकि मृत्यु का भय होता है ना हर एक व्यक्ति को। तो ये प्रश्न पूछा था, किसी ने संतोषजनक या ऐसे कोई उत्तर नहीं दिया था जिससे कि राजा परीक्षित संतुष्ट हो। तो उन्होंने फिर राजा सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया बिना इधर उधर की कोई बातें किए हुए, तस्मान भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छ आभयम्। इसलिए हे राजन, हमें चाहिए कि जो भी व्यक्ति अभय होना चाहता है, विशेष रूप से मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण जो कि सातपति हैं, भक्तों के स्वामी हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, अंतर्यामी हैं, ऐसे श्री कृष्ण के बारे में उनको श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसे करने से मृत्यु के डर से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो राजा परीक्षित को पहले से ही उन्होंने सूत्र बता दिया, निर्भय होने का ये रास्ता है। फिर आगे चल के सुखदेव गोस्वामी ये भी कहते हैं, एतानि विद्यमानानां इच्छतां हतो भयं योगिनां प्रणीतं हरे रामानुकीर्तनम्। जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे सतत हरि नाम लेना चाहिए। किन लोगों को लेना चाहिए? हरेक व्यक्ति को लेना चाहिए। निर्विद्यमानानां, जो भक्त होते हैं जिनके भौतिक इच्छाएं आदि नहीं होती हैं,
या इच्छादान जो कर्मी लोग होते हैं जिनके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं, योगी नाम जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, तो चाहे हम भौतिकतावादी लोग हो, हम भक्त हो, हम ज्ञानी हो, हम योगी हो, एकान्वितमाना नाम इच्छता अपतो भयम्। यदि हम निर्भय होना चाहते हैं तो हमें हरे नामाद कीर्तनम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुशब्द का अर्थ है पीछे पीछे करना या बार बार करना। ये अनुशब्द बहुत बार आता है, अनुस्मरण, अनुकीर्तन, अनुगामी इत्यादि। तो अनुशब्द का तात्पर्य ये है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से किया है वैसे करना चाहिए। हरिनाम उच्चारण मन मारे ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, जय निताय राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। एक किसी अपने संप्रदाय के भक्त हैं, उन्होंने ये मंत्र चालू किया। तब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के वृंदावन में पास में एक मठ से दिन भर ये मंत्र लगाते थे। दिन भर में वो लाउड स्पीकर पर ये मंत्र सुनने पड़ता था। इसलिए कभी कभी हम हैरान हो जाते थे कि कम से कम महामंत्र तो बोलो। भक्तों ने जाके उसे निवेदन किया तो उन्होंने थोड़ा स्पीकर कम तो किया, लेकिन फिर भी वो निकाय हो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम है तो भगवान के नाम ही, परंतु ये प्रामाणिक मंत्र तो है नहीं। इसलिए जयकर महाप्रभु ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये अनुकीर्तन अब नहीं है क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसे इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया है कभी। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों में चलना बहुत आवश्यक है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य है, देवतागण परम सत्य नहीं है। देवताओं को परम मानना एक अपराध होता है, फिर भी देवताओं का अनादर करना भी अपराध है। ना तो हमें देवताओं को परम मानना चाहिए और ना हमें देवताओं का अनादर करना चाहिए। तो फिर देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, देवताओं को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। तो एक बार भक्त पूछा, फिर हमें गणेश चतुर्थी में गणेश जी की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो हमारे विघ्नों का नाश करते हैं, गणेश जी भी भक्त हैं भगवान के। पहली बात तो ये है कि पूर्ववर्ती आचार्य ने ऐसे हमें बताए हैं, इसलिए नहीं करते। बस बहुत सरल सी बात, सीधी सी बात, जो भक्ति करनी है, नाम कीर्तन करना है, तो जैसे आचार्य ने बताया वैसे करना है। हम अपने नए पथ का आविष्कार नहीं कर सकते। यदि आचार्य ने कहा होता कि गणेश जी भी भक्त हैं तो गणेश जी की उपासना साथ साथ करते रहना तो हम कर लेते, परंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का आदेश ऐसा नहीं होने के कारण हम नहीं करते। गणेश जी को पूरा सम्मान अर्पण करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम भी करते हैं अवश्य, परंतु उनके नामों का जप करना, कीर्तन करना, उनकी आरती करना, उपासना करना आदि, ये हमारे लिए उचित नहीं है क्योंकि हमारे आचार्य ने नहीं कहा है। वैसे गणेश जी की पूजा आजकल इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है क्योंकि ये इसके पीछे एक राजनीतिक कारण था लगभग 100 वर्ष पहले। तो राजनीति के क्षेत्र में ये सब निर्णय लिया गया था, खैर दूसरा इतिहास है, इसलिए आज बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे हो चुका है। तो उसी तरह से काली कीर्तन, कई लोग होते हैं काली कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन शब्द, भक्ति शब्द, ये केवल भगवान श्री कृष्ण के संबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है, देवताओं के लिए नहीं। तो देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए
साथ साथ देवताओं के नामों का उच्चारण कीर्तन करके नहीं करना चाहिए, उसके लिए श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन भी हमारे लिए उचित है। साथ साथ में अनुशब्द का तात्पर्य है कि हमें बार बार करना चाहिए, सतत करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए करें फिर बंद करें। तो इसलिए ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निर्णित हो चुका है, निर्णय ले चुके हैं आचार्य पहले कि यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए हमें और कोई नया निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि निर्णय दिया जा चुका है कि भय से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और आगे चल के यहाँ इसी अध्याय में भी हम देखने वाले हैं कि कैसे माता यशोदा ने योगिनी और पिशाची इत्यादि डाकिनी इनसे दूर कृष्ण को दूर रखने के लिए उन्होंने कैसे भगवान नारायण के नाम लेना शुरू कर दिया। तो साधारण परिस्थिति में भी भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए। ये भी प्रश्न आता है कि कठिनाई के समय हम हरि नाम लेंगे तो क्या ये शुद्ध भक्ति होगी, क्योंकि शुद्ध भक्ति वो है जिसमें हम भगवान से कोई भौतिक चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो अपनी रक्षा के लिए यदि हमने भगवान का नाम लिया तो क्या ये शुद्ध भक्ति होगी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति में अपने प्राण की रक्षा करने के लिए या बहुत ही विकट परिस्थिति में ऐसे कोई हरिनाम लेता है तो ये उसकी शुद्ध भक्ति में दोष नहीं रहता, इसको दोष नहीं मानना चाहिए। अन्यथा द्रौपदी की भक्ति को भी हमें सकाम भक्ति मानना चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने हे गोविंद कहकर कृष्ण को पुकारा था कठिनाई के समय, क्योंकि भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना ही इस तरह से की है कि पदम पदम यत्र पदम, जैसे प्रभुपाद जी हम कह रहे हैं तात्पर्य हर पल पर विपद है यहाँ भौतिक जगत में, तो सृष्टि है ही ऐसे। तो यहाँ इस सृष्टि में रहते हुए भक्ति करते करते ये तो होना ही है कि समय समय पर तरह तरह की कठिनाइयां आएंगी। जब कोई विकट परिस्थिति आती है हमारे जीवन में तो यहाँ वहां जाने के बजाय भगवान श्री कृष्ण के नामों को हमें लेना चाहिए, कथा में आकर भी बैठना चाहिए। तो ये श्रवण आदि श्रवण कीर्तन का पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न यत्र श्रवण आदि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु। तो ऐसे श्रवण कीर्तन आदि के पद से रक्षक ज्ञान, रक्षक ज्ञान मतलब ये कथा, ये नाम जो है, ये ध्वनि जो है, हर प्रकार से हमारी रक्षा करने में समर्थ है। और ये भक्त की पहचान होती है, रक्षिष्यति इति विश्वासो। भक्त सच्चा भक्त वो होता है जो विश्वास रखता है कि श्री कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्ष दे कृष्ण विश्व कृष्ण, अवश्य रक्ष दे कृष्ण विश्वास पालना। ये विश्वास हमें पूरी तरह से होना चाहिए कि निश्चित ही कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति का एक लक्षण है, इसलिए हमें आदत बना लेनी चाहिए कि हम बार बार कृष्ण का नाम लेते रहें, ताकि आपातकालीन स्थिति आए, अचानक भी आएगी, हम गाड़ी में जा रहे हैं अचानक अपघात हो जाता है, तो उस समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, कृष्ण का नाम निकलना चाहिए मुंह से, उसके लिए हमें अभ्यास हृदय पूर्वक करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।